যে আনিল প্রেম দান করুণা
কোথা গেলে পা
గోపేశగోపికాకాంతరాధాకాంతనమస్తే తప్తకాంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసృతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరూపేశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఆజ శ్యామానంద పండిత్ అతిరూప భయ హం సబ్కే విశేష సౌభాగ్య కా దిన హై. శ్యామానంద ప్రభు జైసే మహాన్ ఆచార్య కా గుణగాన్ కరణ కే లియే మహాన్ యోగ్యతా కీ ఆవశ్యకతా చాహియే, క్యోంకి హమే బహుత్ అధిక కమియాన్ హై, అశుద్ధియాన్ హై. వో తభీ శుద్ధ హో సక్తీ హై జబ్ హమ్ అప్నే టోటలీ బోలీ కే ద్వారా ఐసే మహాన్ ఆచార్య కా జబ్ గుణగాన్ కర్తే హై, हम शुद्ध होने लगते हैं. और इसलिए सारे शास्त्र इस चीज का वर्णन करते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, मौका है हर एक जीव को. यदि उसको ये सौभाग्य मिलता है कि वो वैष्णव और कृष्ण का गुणगान कर सके अधिक से अधिक, और वास्तव में वही व्यक्ति वैष्णव का गुणगान कर सकता है जो आदोषदर्शी है, जिसके अंदर दोष दृष्टि नहीं है, दोष देखने की प्रवृत्ति से सदैव मुक्त है. वही व्यक्ति वास्तव में निर्मल हृदय के द्वारा वैष्णव का गुणगान कर सकता है पूर्ण रूपेण बिना किसी हेतु के. जनरली भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि हम एक दूसरे का गुणगान करते हैं, लेकिन क्या हमारा उस गुणगान या उस प्रशंसा के पीछे कुछ ना कुछ भौतिक हेतु होता है, जिसके द्वारा हम आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं. तो ऐसी प्रशंसा ऐसा गुणगान के द्वारा हम कभी भी शुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे. इसलिए वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान आचार्य हैं, उस कैलिबर के जो आचार्य हैं, वही वास्तव में निर्मल हृदय के द्वारा बिना किसी भौतिक हेतु के, जैसे भौतिक जगत में कहते चापलूसी, हमारा कोई हेतु होता है तो हम एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, क्योंकि हम भौतिक भोग की भावना से बहुत प्रगाढ़ रूप से बंध गए हैं. हम इंद्रियों के वश में आकर उनकी तृप्ति करना चाहते हैं, और जिसके लिए हम क्या करते हैं, उस भौतिक भोग के स्वार्थ में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए हम वैष्णव समाज में आकर भी एक दूसरे की प्रशंसा और गुणगान करते हैं, बल्कि जो असली उद्देश्य है उसको भूलते हैं. तो जैसे मैं कह रहा था, केवल नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व दूसरे महान व्यक्तित्व का गुणगान कर सकते हैं. महाजन, हम महाजन ही दूसरे महाजन का गुणगान कर सकता है. चैतन्य चरितमृत आदि में हम देखते हैं अलग अलग महान महान आचार्यगण भक्तगण दूसरे महान भक्तों का गुणगान करने में कभी थकते नहीं है. तो वो भावना तभी आ सकती है जब हम वास्तव में शुद्ध हो गए हैं, तभी किसी महान आचार्य का गुणगान कर सकते हैं. और वही व्यक्ति गुणगान कर सकता है जिसके हृदय में दूसरे महान वैष्णव या भक्तों के लिए प्रगाढ़ आसक्ति है, और उस आसक्ति के कारण हम ये जो सॉन्ग हमने गाया था जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर का जो आकर्षण है, अटैचमेंट है, आसक्ति है महान वैष्णव के प्रति, वो प्रकट होती है. प्रेम जिसको प्रीति कहते हैं, और वो कह रहे हैं इतना अधिक आसक्ति है भक्तों में, मतलब भक्तों के संग से दूर हो जाऊंगा तो मेरे श्वास बंद हो जाएगी, इस प्रकार की भावना इस गीत में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। वो रोते हुए कहते हैं, और ये गीत वास्तव में उन्होंने उनके हृदय से तब निकला जब उन्होंने सुना श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने सर्वाधिक संग लाभ किया था श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु और स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर। ये त्रयो है, तीन पर्सनैलिटीज हैं जो हमेशा हमेशा एक संघ में रहते थे, और बल्कि अलग अलग गुरु के शिष्य थे ये, लेकिन उन सबका मिशन क्या था? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। ये तभी संभव है जब व्यक्ति वास्तव में अपना जो असली साध्य है, गोल है, उसको प्राप्त करने की एक में अभिलाषा रखता है, तो सारे भौतिक मतभेद आदि को त्याग कर केवल इस आंदोलन की सेवा करने में तत्पर होता है, चाहे वो अलग अलग गुरु के शिष्य क्यों ना हो। तो यही भावना इन तीन आचार्यों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है कि तीन अलग अलग गुरुओं के शिष्य होने के बावजूद भी उनको देखने मात्र से, उनके कार्यकलापों को परीक्षण करने मात्र से पता चलता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग संगमित है। इसलिए जब माया क्या करती है, सबसे पहले हमें भक्तों के संग से दूर कराती है, भक्तों में मतभेद आदि उत्पन्न करके हमें अलग करती है, और फिर माया को बहुत इजी होता है भक्तों को नीचे खींचकर उसके नाक भौतिक जगत में रगड़ना, ताकि वो यहाँ सरता रहे। तो लेकिन ऐसे ये जो तीन आचार्य के जीवन से हम देखते हैं, और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय से ये गीत बंगाल अपने गांव में थे, वो खेतुरी में एक ही बार ब्रज में आए थे, दूसरी बार उसने उन्होंने ब्रज का दर्शन नहीं किया, लेकिन ब्रज में आकर वो ब्रज को अपने साथ ले गए थे खेतुरी में, और वहां सदैव वृंदावन के वियोग में, और वृंदावनस्थ जो भक्तगण है उनके वियोग में सदैव क्रंदन करते थे, रोते रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर। और तब ये जो उनका जो प्रार्थना बुक है, ग्रंथ है, ये वास्तव में कुछ और नहीं है, वृंदावन और वृंदावनस्थ जो ये वैष्णव गण है उनके वियोग में उन्होंने रोदन किया है, रोए हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनके हृदय से सारे गीत स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गए, और वो आगे चलकर कंपाइल किया गया प्रार्थना। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर। और वास्तव में जो ये महान महान वैष्णव गण है उनके हृदय में करुणा प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, बहुत बड़ा स्टोर है करुणा का, दया का, कंपैशन का। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जय अनिलो प्रेम धन। और वास्तव में उन्होंने प्रेम धन शब्द पहले यूज किया है, क्यों? क्योंकि जिसके पास प्रेम धन नहीं है उसके पास करुणा हो नहीं सकती, दया कंपैशन सारे जीवों के प्रति असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अंतलीला में, वो रोते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ, नौकरी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धान, आप मुझे क्या बनाओ? आपका सेवक बनाओ, दास बनाओ, और मैं दासत्व आपका स्वीकार करूंगा, तो इस दासत्व के बदले में मुझे क्या चाहिए? देह प्रेम धन, प्रेम रूपी जो धन है, नाम संकीर्तन रूपी धन आप मुझे प्रदान करो। तो वास्तव में नरोत्तम दास ठाकुर इन गीतों में उन महान वैष्णव का गुणगान करते हैं, और वो कहते हैं कि वास्तव में ये जो हर एक भक्त कृष्ण प्रेम का भंडार है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे महान वैष्णव के संपर्क में आता है तो वो भी कृष्ण प्रेम का भंडार बन जाता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं, श्रील प्रभुपाद का हृदय वास्तव में कृष्ण प्रीति का भंडार था, वो गए और उस प्रेम रूपी भंडार का एक बूंद उन्होंने विदेशों में छिड़का, जिसके द्वारा पूरे विश्व में सारे जो जीव हैं शुद्ध होने लगे और इसका प्रभाव इतना है कि वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके हृदय में वैष्णव के लिए प्रगाढ़ प्रेम आसक्ति है, वही व्यक्ति वास्तव में महान वैष्णव का गुणगान करने का सामर्थ्य रखता है। कितनी आसक्ति? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पाशाले कुटिबो माथा आनले पशिबो। जैसे हम किसी से भौतिक रूप से प्रीति करते हैं, कोई युवक युवती से प्रेम करता है तो उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है उसके विरह में। जब वो उसको छोड़कर चली जाती है तो वो आत्महत्या आदि करता है, विष पान आदि करता है। तो वैसा ही प्रेम, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा कि हे कृष्णा, लालसा में प्रार्थना में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्णा, मेरा जो प्रीति है आपके प्रति वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी युवक का आकर्षण एक युवती के लिए है, या किसी युवती का आकर्षण किसी युवक के लिए है। तो वैसा ही प्रेम वैष्णव के लिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट करते हैं। और उस प्रेम के, प्रगाढ़ प्रेम के कारण जब ये महान महान वैष्णव चले गए, जब उन्होंने सुना इन सब वैष्णव के बारे में, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, सनातन, रघुनाथ दास, भट्ट गोस्वामी आदि, कृष्णदास कविराज, महाप्रभु आदि, जिनका उनको संग नहीं प्राप्त हुआ, इन सबके संग लाभ न प्राप्त होने के विरह के कारण नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, कहते कि मैं अपना माथा पाषाण की कोटि को माथा पाषाण पर पत्थर पर फोड़ देता हूँ। पाषाणी कुटी को माथा अनले पशिबो, और मैं आग में प्रवेश कर जाता हूं। तो ये इतना प्रेम का प्रगाढ़ लक्षण है वैष्णव के प्रति, और यही सफलता है जीवन की। क्या सफलता है? कृष्ण से प्रेम हो या ना हो, लेकिन भक्तों का संग हमें अभी अच्छा लगता है, और भगवान के भक्तों के संग में हम प्रीति जागृत करते हैं। तो देवोति माता कहती है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम्। तो देवोदी ने कहा, जब वो कपिल देव से लेक्चर सुनने वाले थे, तो उससे वो पहले वो कहती हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम का मतलब है आसक्ति, अजरम का मतलब है बहुत स्ट्रांग आसक्ति, पाशम का मतलब है कि बिल्कुल बंधा हुआ है पाश से। आत्मनः कवयो विदु, तो जो विदु है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहते हैं, देवोदी ने कहा कि इस भौतिक जगत में आत्मा के लिए भौतिक आसक्ति बहुत बड़ा बंधन है, उससे उसको निकलना असंभव है। लेकिन वही आसक्ति जो इस भौतिक संसार में है, वही आसक्ति देवोदी कहती है सएव साधुषु कृतो, वही आसक्ति महान वैष्णव के प्रति हम जागृत करते हैं आध्यात्मिक गुरु आदि में, तो क्या होता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार खुल जाते हैं पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से क्यों ऐसे वैष्णव के प्रति आसक्ति, क्योंकि वो वैष्णव कोई सर्व सामान्य ये नहीं है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैया अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ा, कि ऐसे भक्तों के प्रति आसक्ति से क्या होगा, क्योंकि ये भक्त मेरे अनन्य भावना से भक्ति करते हैं, और उनकी भक्ति कैसी है, दृढ़ा कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत कृते त्यक्त कर्माणां त्यक्त स्वजन बांधवः। तो वहां कहते हैं कि ऐसे भक्त मेरे लिए अपने स्वजन बांधव आदि को छोड़ देते हैं, छोड़ा है जिन्होंने, और पूर्ण रूपेण मुझ में निमग्न हो गए हैं और मेरा आश्रय ले रहे हैं। मेरा आश्रय लेने का मतलब है, वहां देवती कहती है कि ऐसे साधुगण मदाश्रया कथा मृष्टा श्रुण्वन्ति कथयन्ति च, कि मेरा आश्रय लेते हैं सदैव, मदाश्रया कथा मेरी कथा में आनंद लेते हैं, श्रुण्वन्ति सुनते हैं और मेरा गुणगान करते हैं, तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। इसी कारण से जो महान वैष्णवगण, कृष्ण कहते हैं कि मुझ में निमग्न होते हैं, इसी एक में गुण के कारण तपति विविधा तापा न, इमुन वो लोगों को तीन प्रकार के ताप कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देवती कहते कि ऐसे साधु का फिक्स हो जाता है उनका मन, उनका हृदय, उनका चित्त मेरे कार्यकलापों में। तीसरी है, वास्तव में देवती ये वर्णन करती है कि सक्सेस यही है कि भगवान के महान जो आचार्य वैष्णव आदि है उनमें आसक्ति को जागृत करना। और इसी कारण से शुक्रदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, विले बदोरुक्रम विक्रमालये न शुक्रता करण फुटे न दर्शन, कि जब ये कान उत्साहित नहीं है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए और भगवान की गुणगान को सुनने के लिए, तो ये क्या है? सांप के बिल है। और इतना ही नहीं, सुत गोस्वामी आगे कहते हैं, जिह्वा सति दार्दुरिकैव असति, जिह्वा असति, ये जीव यदि भगवान और उनके भक्तों का गुणगान नहीं करते तो वो सती नहीं है। सती का मतलब है पतिव्रता स्त्री, अपने पति के अलावा दूसरे पति की कामना करती है तो उसको असती कहा जाता है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये जीव भी उसी स्त्री के समान है, यदि भगवान के भक्त और भगवान का गुणगान करने के अलावा किसी और में आनंद ले रही है तो ये जीव साध्वी नहीं है, सती नहीं है, पतिव्रता नहीं है, हाँ, तो ये जीव क्या है? असती है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी भी हमें कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा, जिह्वा का इस्तेमाल करो, इसके लिए कृष्ण और उनके भक्तों का गुणगान करने के लिए। इसलिए हरि भक्ति सुधर में है ध्रुव महाराज भक्तों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने लगभग अपने बहुत सारे तात्पर्यों में इस श्लोक को उद्धृत किया है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं भक्तों की महिमा को स्थापित करने के लिए, वो कहते अक्षो फलम तो अदृश्य दर्शनम ही, कि हे मेरी आंखें, आपका तो सबसे अधिक लाभ क्या है? जो भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्तिमय वैष्णवगण है, भक्त है, उनका दर्शन करना। उनके दर्शन से क्या होगा? दर्शने पवित्र कर ये तुम्हारा गुण, महान वैष्णव का दर्शन करने मात्र से आप पवित्रता का अनुभव करते या पवित्र हो जाते हैं। और फिर ध्रुव महाराज कहते हैं तनो फलम तो अदृश्य गात्र संघ, ये शरीर का लाभ क्या है, फल क्या है? आप जैसे महान वैष्णव का संग या उनका आलिंगन करना। जीवा फलम तो अदृश्य कीर्तनम ही, हे जीव तुम्हारा वास्तव में ये की लाभ है कि ऐसे महान वैष्णव का क्या करो, उनका गुणगान करो, तो अदृश्य कीर्तनम ही, उनका कीर्तन करना। क्यों ये सब करना? सुदर लभा भागवता ही लोके, क्योंकि संसार में सारी चीजें सुलभ हैं, लेकिन एक ही चीज बहुत अधिक सुदुर्लभ है और वो क्या है? महान वैष्णव गण। इसलिए भक्तिराम ठाकुर ने कहा जीवा का वास्तव में कोई सदुपयोग है त्वादर्श त्वादृश कीर्तन ही, उनका कीर्तन करना। इसलिए भक्तिराम ठाकुर ने कहा तार मध्य जीवा अति लोभमय, को बहुत लोभी है, तो ऐसी लोभी जीवा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सही रूप में। जब हम क्या करें, कृष्ण का और उनके भक्तों का गुणगान करें, क्योंकि ये जीव यदि वैष्णव का गुणगान करने में नियुक्त नहीं करते या कृष्ण का गुणगान करने में नियुक्त नहीं करते तो ये जीव है बहुत छोटी, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव। आप कृष्ण की ओर भाग सकते हैं बहुत तेजी से या माया की ओर दौड़ सकते हैं बहुत अधिक रफ्तार से, जैसे बोट होता है या छोटी सी नाव होती है, तो उसमें हम देखा डायरेक्शन चेंज करने के लिए मायापुर आप जाते हैं तो एक छोटा सा नीचे उसको जीवी कहते हैं, हाँ वो होता है, वो थोड़ा सा ऐसा घुमाते हुए पूरी बोट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जीव है, यदि ये जीव गुरु भगवान और वैष्णव आदि का गुणगान नहीं करते तो वास्तव में वो हमारा ये शरीर रूपी जो नाव है उसको पूर्ण रूपे न मोड़ सकती है, भौतिक संसार में बहा सकती है। हम देखते हैं
ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उदाहरण आता है नारद का, भागवतम में भी आया है कि नारद दासी पुत्र क्यों बने। पहले तो वो पिछले जीवन में उपबरह नाम के गंधर्व थे। तो सारे देवतागण ब्रह्मा ने एक सभा आयोजित की थी जहाँ सारे अलग अलग देवताओं को और कई सारे भक्तों को इनवाइट किया था। और वहां क्या होने वाला था कि वैष्णव गीतों को गाने वाले थे, मतलब तो कृष्ण का गुणगान करने वाले थे, नाम संकीर्तन होने वाला था। तो जो गंधर्व है वो इसलिए फेमस है, गंधर्व कला यानी जो संगीत विद्या है इसको गंधर्व कला कहते हैं। तो गंधर्व स्वाभाविक रूप से गान करने में, गाने बजाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा ने देखा सारे गंधर्वों का प्रमुख उपबरह गंधर्व है, उनको कहा कि आप अपने पूरे टीम के साथ आ जाओ। तो उपबरह गंधर्व आए, वहां सारे महान महान देवता गणादि बैठे थे, भक्तगण भी थे और सब उत्साहित है कि इनके मुख से आप कीर्तन सुनेंगे, कितना स्वीट गाते हैं। अभी वो ऊपर बरहन नाम के प्रभु जी को बुलाया, वो बैठ गया अपना तंबोरा सब कुछ मृदंग करताल हारमोनियम सब लेकर, और सब सोच रहे थे कि अभी मधुर कृष्ण का गानामृत कृष्ण रसायन का गान होगा, कृष्ण नाम का गान होगा। तो इन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां भी थी, अभी गंधर्व है तो गंधर्विकाएं भी थी, तो बहुत सारी स्त्रियां भी थी। तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया उपबरह गंधर्व का, और उस स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए नॉन डिवोशनल सॉन्ग गाने लगे, जो भक्ति या कृष्ण और वैष्णव का गुणगान करने के संबंधित जो गीत रहे हैं उनका गान करने लगे। तो ब्रह्मा का जो टेम्परेचर है ना तो बहुत हाई हो गया। ब्रह्मा ने कहा इतना आदर सम्मान के साथ हमने इनको इनवाइट किया है और ये क्या गा रहा है, कृष्ण का गुणगान करने के बजाय माया के गीत गा रहा है, फिल्मी सॉन्ग गा रहा है। तो फिर ब्रह्मा ने उनको श्राप दिया, जिसके कारण आगे चलकर दासी पुत्र बने, वही दासी पुत्र नारद है। इस प्रकार से कितना बड़ा हानि है, कितना बड़ा नुकसान है, इसलिए इस चीज को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे महाप्रभु के भक्तगण है, महाप्रभु के भक्तगण वो है जो महाप्रभु के भक्तों का गुणगान करना जानते हैं, हाँ, और उनकी सेवा करना जानते हैं और उनको असली में उनको तत्व से जानते हैं। क्या नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा महाप्रभु के भक्तगण कौन है, गौरांगे रस संगी गणे नित्य सिद्ध करे माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश। कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो अलग अलग भक्त का आविर्भाव और तिरभाव आता है, तो ये कोई सर्वसामान्य भक्त नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। गौरांग संगी गणे नित्य सिद्ध करे माने, हमें ये अपने हृदय में स्थापित करना होगा कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो ये आचार्य गण है, गुरु वर्ग आदि है, ये कोई सर्वसामान्य जीव नहीं है, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी है। इस भावना से उनको देखना चाहिए। अनित्य सिद्ध करे माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई व्यक्ति कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की उपासना करता है, उनकी सेवा करता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रजेंद्र सुत कृष्ण के पास वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत अद्भुत अपॉर्चुनिटी है कृष्ण का गुणगान करने की, उनके भक्तों का गुणगान करने की। इसलिए अपने महाराज क्या करते थे, वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णन, अपने वाचा के द्वारा वैकुंठ गुण गुणानुवर्णन, वैकुंठ के आदेश कृष्ण है और उनके भक्त उनके गुणों की चर्चा करते थे। तो आज ऐसे ही महान आचार्य श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव है, तिरुभाव और आविर्भाव दोनों एक समान ही है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि महान वैष्णवगण इस जगत में रहे हैं या इस जगत से अप्रकट हो जाए, दोनों ही स्थिति में वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहता है, मुक्त वही है, चाहे वो इस संसार में रहे या आध्यात्मिक जगत में जाए, दोनों जगह क्या है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वो मुक्त जीव है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु, ये क्या है, भगवान चैतन्य के नित्य संगी है। और केवल इस भौतिक जगत के जीवन पर करुणा का करुणा प्रदान करने के लिए या उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए श्यामानंद प्रभु जैसे महान वैष्णव आविर्भूत होते हैं। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु का जन्म ओडिशा में हुआ था, दंडेश्वर में, कृष्ण मंडल राय। कृष्ण मंडल उनके पिता का नाम था और वहाँ उनकी मदर थी दुर्गा दासी। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु बचपन से ही महान भक्त थे और बचपन से ही उनका अनुराग श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के लिए था, क्योंकि उनके पिता कृष्ण मंडल और दुर्गा दासी सदैव चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास आदि भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करते रहते थे अपने घर में। तो बचपन से महाप्रभु आदि के बारे में सुनने मात्र से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने से एक साल पहले इनका जन्म हुआ था, हम श्यामानंद प्रभु का, श्रीवास श्रीनिवास आचार्य 10 साल पहले प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु तब तक जगन्नाथपुरी में थे। तो ऐसे श्यामानंद पंडित बचपन से ही, इनका उस समय नाम तो श्यामानंद नहीं था, उनके माता पिता को बहुत जितने भी बच्चे होते थे लगभग 8-10 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, वो सारे जन्म लेते ही मरते थे। सारी पुत्रियां हुई थी, एक पुत्र हुआ ये, तो उन्होंने क्या नाम रखा इसका, दुखी, दुखी नाम रखा है, यानी इसका नाम दुखी रखा। और फिर बचपन से जब महाप्रभु और उनके भक्तों के बारे में इन्होंने सुना तो इनके हृदय में बहुत अधिक चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के लिए आसक्ति उत्पन्न हुई। और फिर श्यामानंद या ये दुखी ने अपने माता पिता को कहा कि मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो वो जानते थे कि हम एक प्रकार से उनका जन्म नीच कायस्थ या नीच परिवार में हुआ था, षड्भोग परिवार, मतलब जिसमें गाय वगैरह पालते या गाय का दोहन करने की सेवा होती है या गाय का साफ सफाई आदि करने में जो लोग एंगेज होते हैं उनको षड्भोग कहा जाता है, वो एक जाति है। तो उनके माता पिता ने सोचा हमारा जन्म तो निम्न कुल में हुआ है लेकिन हमारा पुत्र क्या होना चाहिए, महान भक्त होना चाहिए। शास्त्र वर्णन करते हैं कि स्त्री के जो पुत्र आदि हैं वो महान, मतलब तो कोई भी स्त्री है उन्होंने हमेशा उसको जन्म लेना चाहिए, वैष्णव को जन्म लेने की अभिलाषा रखनी चाहिए। नहीं तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो माता आदि हैं वो पशुओं से भी नीच है। तो उनके माता पिता सोच रहे थे कि हम तो नीच परिवार में हैं लेकिन हमारा पुत्र महान वैष्णव बने, तो उन्होंने कहा आप निश्चित करो। तो श्यामानंद प्रभु ने अपने माता पिता से गौरीदास पंडित और उनके लिए जो गौर नेता है उनके लिए प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद स्वयं उनके पास थे, उनके बारे में सुना था और उनसे बहुत आकर्षित थे गौरीदास पंडित और उनके शिष्य हृदय चैतन्य। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंबिका कालना जाना चाहता हूँ और वहां जाकर हृदय चैतन्य के द्वारा दीक्षित होना चाहता हूँ, दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। उनके पिता ने कहा तुम तो छोटे से हो कैसे जाओगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ओडिशा से बहुत लोग नवद्वीप जाते हैं, मैं उनके संग में जाऊंगा, वहां अंबिका कालना में हृदय चैतन्य का आश्रय लूंगा, उनसे मिलूंगा और तीव्रता से वापस आ जाऊंगा। तो श्यामानंद प्रभु कुछ लोगों के साथ अंबिका कालना गए, तो अंबिका कालना नित्यानंद प्रभु की भूमि है, सूर्यदास सरकेला गौरीदास पंडित, तो वहां गए और उन्होंने पूछा गौरीदास पंडित का घर कहाँ है, गौरीदास की बाड़ी कहाँ है जहाँ हृदय चैतन्य उनके शिष्य निवास करते हैं। तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि यहाँ इस स्थान में निवास करते हैं। तो ये श्यामानंद दुखी कृष्णदास वहां गए और हृदय चैतन्य का आश्रय लिया और उनसे याचना की कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करो। तब वे देह प्रणय पा गए न परे प्रश्न से होया उपदेक्षण की पे ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआती है तत्वदर्शी व्यक्ति का विनम्रता के साथ आश्रय ग्रहण करना। तो उनका आश्रय लिया, उन्होंने दीक्षा प्रदान किया और उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। तो अब ये दुखी कृष्णदास, हम कृष्णदास कैसे दुखी हो सकता है, असंभव है। ये दो शब्द आपस में विरोधाभास है, मिलित नहीं है। प्रभुपाद ने कहा चैन एंड बी हैप्पी। तो ऐसे दुखी कृष्णदास को आध्यात्मिक गुरु ने दीक्षा दिया और उन्होंने कहा, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं ब्रज जाना चाहता हूँ। अपने आध्यात्मिक गुरु को परमिशन लिया, वो वृंदावन आए और वृंदावन में गौरीदास पंडित ने हृदय चैतन्य ने एक मैसेज दिया था जीव गोस्वामी के लिए कि एक मैसेज जीव गोस्वामी को दो और जीव गोस्वामी आपको क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। इनसे तो दीक्षा ले थी लेकिन शिक्षा के लिए कहाँ भेजा, जीव गोस्वामी के पास। तो श्यामानंद पंडित गए वहां, उनको और दो महान वैष्णव मिले, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, और ये उनके संग में रहने लगे श्यामानंद पंडित। इन तीनों का बहुत प्रगाढ़ आपस में मैत्री का संबंध था और आपस में बहुत अच्छा भक्ति में सिद्धांत पर चर्चा आदि करते थे, सर्विस आदि में पेश होते थे। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु वहां रहे और वहां रहकर उन्होंने एक सेवा उनको प्रदान की जीव गोस्वामी के लिए। वो रोज सुबह सुबह मटका भर के पानी वगैरह लाते थे और दूसरा क्या करते थे, सेवा कुंज में जो रास स्थली है वहां रोज झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे ब्रज की धूलि को। और झाड़ू इसलिए भी लगाते थे कि वैष्णव वहां से गुजरते थे तो वो वैष्णव की एक सेवा है और उनके पांव में कांटे आदि ना आए, और सदैव ब्रज की सेवा की लालसा को अपने हृदय में रखते हुए वो ये सेवा करते थे। सिंपल सेवा, ब्रज में जाकर झाड़ू लगाने की सेवा। हम तो बड़ी बड़ी सेवाओं की आकांक्षा करते हैं लेकिन ये जो श्यामानंद प्रभु बड़े विनम्रता के साथ जीव गोस्वामी के आदेश अनुसार इस सेवा में लगे। क्योंकि सेवा में सफलता क्या है, जब आप अपने अधिकारी के अनुसार, आपके जो अथॉरिटीज हैं उनके अनुसार सेवा में नियुक्त होते हो तो वो सेवा आपको सिद्धि प्रदान करती है। सिद्धि का मतलब है कि वो सेवा आपको प्यूरिफाई करती है। हम अपने मनगढ़ ढंग से किसी सेवा को चूज करते हैं कि हम मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सेवा भौतिक रूप से बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकती है लेकिन आपके हृदय का शुद्धि होना असंभव है। आपके हृदय वैसे की वैसे बंजर भूमि रहेंगे, शुद्धि नहीं होगी, अनर्थास हाँ आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे लेकिन आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा और उससे रिजल्ट प्राप्ति नहीं होगी। तो जीव गोस्वामी के आधार पर, उनके मार्गदर्शन पर श्यामानंद प्रभु सिंपल सेवा में लगे थे। क्योंकि कृष्ण की सेवा चाहे प्रवचन देना हो या बहुत बड़े भौतिक रूप से दिखने वाली बड़ी सेवा हो या झाड़ू लगाने की सेवा हो। अभी कुछ लोग जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा के समय जब जैसे दिल्ली आदि में जहां मर्जी होती है रथ यात्रा, तो सब लोग चाहते हैं कि मैं नीचे क्यों चलूं, मैं तो जगन्नाथ के वहां खड़ा रहूं कुछ लेकर। कई लोग भाई रहते कि हाँ तो वो सोचते कि बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन कुछ लोग बहुत विनम्रता की भावना से पूरे रास्ते में झाड़ू लगाते हुए कीर्तन आदि करते हुए मग्न रहते हैं गुरु और वैष्णव के आदेश अनुसार। तो सेवा से तभी हम शुद्धि अनुभव कर सकते हैं जब हम अधिकारियों के अथॉरिटी के आज्ञा के अनुसार जब हम सेवा में नियुक्त होते हैं, वही सेवा हमें चरम सिद्धि दे सकती है, अन्यथा नहीं। चाहे वो हमारा प्रवचन देना हो, चाहे हमारा कीर्तन हो, चाहे मंदिर के लिए झाड़ू लगाना हो या चाहे डेटी वार्षिक हो, चाहे हम जितना मर्जी लंबा करें वो डेटी हमें हमेशा मूर्ति बनी रहेगी यदि हम अथॉरिटी के अनुसार सिंसियरली सेवा को स्वीकार नहीं करते और अपने आप को एंगेज नहीं करते उस भावना से। तो ऐसे रोज नियमित रूप से सही समय में अपने सेवा में नियुक्त होते थे। तो एक दिन ये सब आप जानते हैं इस लीला को, तो एक दिन श्रीमती राधिका, क्योंकि वृंदावन वो भूमि है जहां आज भी कृष्ण नित्य रूप से लीलाओं में मग्न है। जैसे महाप्रभु के लिए कहते आद्याप्रिय से ही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी पारे पाए। आज भी चैतन्य महाप्रभु अपने धाम आदि में सदैव लीला करते हैं लेकिन कौन भाग्यवान है जो उसको देख पाता है। वैसे ब्रज भूमि है जहाँ हर रोज राधा कृष्ण अपने संगियों के संग में नित्य लीला में अनुरक्त है। तो वहां श्रीमती राधिका सेवा कुंज में रास लीला में जोर जोर से नृत्य कर रही थी, गा रही थी, सखियों के संग में वृत्ताकार नृत्य में मग्न थी। तो इस समय उनके चरणों से नकुल हम गिर गया। और श्रीमती राधिका जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो निकल गए अपने स्थान में जाकर सारे सखियों के संग में। तो ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभी इनकी सेवा का समय सुबह सुबह है, तो इन्होंने सोचा श्यामानंद प्रभु की ठीक है कोई देख नहीं रहा है मुझे, तो मैं बाद में सेवा शुरू करता हूँ 10 बजे। नहीं, हाँ, जीव गोस्वामी जब सेवा का समय निर्धारित किया है उसको उन्होंने स्वीकारा और ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगाया करते थे। और उसी झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने देखा चमकीला पदार्थ नुपुर, और देखने मात्र से समझ गए कि ये प्राकृत वस्तु नहीं है, ये क्या है, अप्राकृत है। उसको स्पर्श करने मात्र से उस नुपुर से नुपुर को स्पर्श करने मात्र से रोमांच उनके शरीर में वर्धन होने लगे, अश्रुपात होने लगा, गदगद हो उठे। उन्होंने उस नुपुर को लिया, चूमा, अपने सर में लगाया, शरीर में लगाया और क्या किया, अपने गले के कपड़े में उनको बांध के रखा उस नुपुर को। और फिर देखा अरे नहीं झाड़ू लगाते समय गिर जाएगा, तो उन्होंने ब्रज की मिट्टी का एक स्थान में थोड़ा खुदा किया और वहां रख दिया। और उस समय श्रीमती राधिका जब वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे अरे मेरा नुपुर नहीं है। तो उन्होंने ललिता, फर्स्ट सेवक कोई है श्रीमती राधिका की तो वह ललिता देवी है। और वास्तव में वृंदावन हमें कोई रिवील करता है तो शास्त्र कहते कि चार या कुछ पर्सनैलिटीज का नाम लेते हैं कि ये जो पर्सनैलिटीज है हमें वृंदावन को रिवील करते हैं। एक है वृंदा देवी तुलसी महारानी, दूसरा है ललिता देवी, तीसरा है गोवर्धन, चौथा है यमुना। हाँ, तो ये पर्सनैलिटीज हमें वास्तव में, और पांचवे है गोपेश्वर महादेव, वो वृंदावन को रिवील करते हैं शास्त्र कहते हैं। तो ललिता देवी को जब इन्होंने आज्ञा दी तो ललिता देवी के तुरंत नीचे एक सेविका, उनका नाम है रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी है। तो ललिता देवी ने किसी को आज्ञा नहीं दी, ललिता देवी स्वयं ही आए उस सेवा कुंज में ढूंढने के लिए कि कहां श्रीमती राधिका का नुपुर खो गया है। जब वो आए तो इन्होंने अपने मूल रूप में नहीं आए, वहां एक वृद्ध ब्रजवासी स्त्री का देह धारण करके ललिता आई और उन्होंने कहा अरे अरे तुम यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, मेरे बहू का नुपुर गिर गया है, वो आपको मिला तो नहीं यहाँ। उन्होंने कहा थोड़ा सा इनको डाउट आया उनको देख रहे मात्र से ललिता सखी को। उन्होंने कहा आप अपना नाम गांव सब पहचान वगैरह बताओ। तो ललिता देवी जो बोला अपना गांव आदि है वो सब बताती है और वो कहते कि मुझे मिला है लेकिन मैं क्या करूँगा। इसके कई सारे अलग अलग भक्तों ने अलग अलग वर्णन अलग अलग ग्रंथों में आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है कई उसमें लेकिन ऑथेंटिक है। तो जब इन्होंने कहा कि मुझे वो नुपुर मिला है लेकिन आप अपनी असली पहचान बताओ तभी मैं ये तुम दे दूंगा या मैं उनको दूंगा जिनका है। तो ललिता सखी तो सोचे कि ये कैसे संभव है। तो ललिता सखी ने अपना मूल रूप प्रकट किया और ललिता देवी का वो दिव्य देह को देखकर श्यामानंद प्रभु वहां रास स्थली में मूर्छित हो गए। ललिता देवी ने फिर से उठाया और फिर उनको कहा कि आप फिर चल सकते हो मेरे साथ। और एक वर्णन आता है कि ललिता देवी ने उनसे नुपुर लिया और ललिता देवी ने ही उनको वो नुपुर उनके इसमें सिर में लगाया जिसके कारण वो मार्क जो तिलक का चिन्ह है वो प्रकट हुआ और नामकरण भी ललिता देवी ने किया। दूसरा वर्णन आता है प्रेम विलास आदि ग्रंथों में कि ललिता देवी क्योंकि ये बहुत क्योंकि ये कनक मंजरी है, श्यामानंद प्रभु अपने नित्य स्वरूप में कनक मंजरी है। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु ने कहा मैं उनको ये नुपुर दूंगा जिन्होंने इसको जिसका है। तो ललिता देवी उनको ले जाती हैं और ले जाकर उनको स्नान कराती हैं राधा कुंड या किसी कुंड में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और फिर वो दिव्य अपना जो गोपिका देह है कनक मंजरी के रूप में श्यामानंद प्रभु आते हैं और वो श्रीमती राधिका के सामने जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो श्रीमती राधिका के चरणों में वो नुपुर को पहनाते हैं। श्रीमती राधिका उस नुपुर को लेती है अपने हाथ में और श्यामानंद प्रभु के माथे में लगाती हैं, और माथे में लगाकर जोर से दबाती हैं, तो उससे क्या होता है, तिलक का मार्ग नाक से लेकर माथे में आता है, और बीच में एक बिंदी नुपुर में छोटा सा एक उठा हुआ भाग था जो लग जाता है और वो बिंदी के रूप में आता है। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु इस मार्ग को स्वीकार करते हैं और उनका नया नामकरण भी होता है, क्या, श्यामानंद, श्यामा, कृष्ण को श्याम कहते हैं और श्रीमती राधिका को श्यामा कहते हैं। तो श्यामा को जो आनंद देते हैं नुपुर को देकर उनको श्यामानंद कहा गया। और श्रीमती राधिका ने इतना ही नहीं किया बल्कि श्यामानंद प्रभु का भक्ति आदि देखकर, वो उनके नित्य सेविका है कनक मंजरी, उन्होंने एक कृष्ण के विग्रह को प्रकट किया श्रीमती राधिका ने, छोटे विग्रह, और वो श्यामानंद प्रभु को दिया, और श्यामानंद प्रभु ने उसको पूजा आदि उसकी शुरू की। आप वृंदावन में जाते हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर में, तो सबसे पहले तो बड़े श्याम सुंदर दिखते जो बलदेव विद्याभूषण के विग्रह हैं, लेकिन उनके साथ ही राइट साइड में बहुत छोटे से विग्रह हैं और अति विलक्षणीय, अति सुंदर है, सौंदर्यमान है। तो ऐसे श्याम सुंदर वो विग्रह हैं जो श्रीमती राधिका ने श्यामानंद प्रभु को प्रदान किए थे। और जब इस सब घटना के बाद श्यामानंद प्रभु वापस आते जीव गोस्वामी के पास, तो श्यामानंद प्रभु बहुत अधिक चमक रहे थे और बहुत अधिक खुश नजर आ रहे थे। तो जीव गोस्वामी ने पूछा कि अरे आज तुम इतना कैसे आलोकित महसूस हो रहे हो। तो श्यामानंद कुछ छुपा रहे थे, लेकिन ललिता आदि ने कहा था कि ये चीज केवल एक के पास जाकर रिवील करो, एक वैष्णव जीव गोस्वामी, उनके अलावा किसी और से रिवील मत करो। तो ये गए और सारी जो वृत्तांत है उन्होंने जीव गोस्वामी को नरेट किया, जीव गोस्वामी को बताया, और जीव गोस्वामी पुलकित हो गए, उनके शिक्षा शिष्य का आलिंगन करने लगे। और सारे वैष्णवों ने देखा ब्रज में कि ये तो इसकी माथे पे तो डिफरेंट ही तिलक है, इसका नाम भी अलग हो गया है। तो वृंदावन में थोड़े से अलग से चर्चा हो रही थी और सब सोच रहे थे कि ये जीव गोस्वामी ने क्या किया है, इनको शायद नया नामकरण और नया दीक्षा आदि दिया है। तो इसका वृत्तांत उनके गुरु हृदय चैतन्य के पास पहुंचता है और हृदय चैतन्य वापस आते हैं। हाँ, वो बहुत लंबा वर्णन है उन सारी घटनाओं का। तो हृदय चैतन्य आते हैं ब्रज में, पहले तो अपने 10 शिष्यों को भेजते हैं कि जाके चेक करो एग्जैक्टली ये घटना हुई या नहीं हुई। हाँ, तो फिर वो शिष्य जाते हैं और फिर मैसेज देते हैं। तो हृदय चैतन्य चले जाते हैं ब्रज में और जीव गोस्वामी से मिलते हैं। जीव गोस्वामी उनका आदर सम्मान करते हैं और जीव गोस्वामी, हाँ, फिर ये गौरीदास पंडित सोच रहे थे कि ये जीव गोस्वामी ने ऐसा किया है क्यों। तो अपने साथ 12 गोपाल और 64 महंताज, इतना बड़ा टीम लेकर, हाँ, ये जो हृदय चैतन्य है अंबिका कालना बंगाल से निकले थे, इतना बड़ा ग्रुप लेकर कि वहाँ जाकर फैसला करेंगे हम। तो वहाँ जब आए सारे वैष्णवगण बैठे थे महंताज आदि, और उसमें फिर जीव गोस्वामी और इन्होंने वो सारा वृत्तांत सुनाया। श्यामानंद प्रभु फिक्स थे, उन्होंने कहा ये जो कृपा है, ये तिलक और नाम आदि है, ये केवल हे हृदय चैतन्य, हे गुरुदेव, आपके कृपा के कारण ही ये मुझे प्राप्त हुआ है। और फिर उन सबके सामने वो रिवील करते हैं। और वो कहते हैं फिर ये स्थापित हो जाता है कि ये तिलक आदि श्रीमती राधिका की कृपा है और ये नामकरण भी श्रीमती राधिका के द्वारा ही हुआ है। गौरीदास पंडित इसको स्वीकार करते, पहले तो अस्वीकार कर रहे थे, पहले तो एक दो बार ऐसे 2-3 घटनाएं आती हैं, उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, उसके माथे का तिलक मैं पोंछ डालूंगा। तो तिलक पोंछने का प्रयास करते थे तो वो तिलक कभी मिटता नहीं था, और उनके चेस्ट में श्यामानंद नामकरण था वो भी नहीं मिटता था। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित ने सोचा कि मैं तो कृष्ण के प्रति सख्य भाव में है और मेरा ये शिष्य माधुर्य भावना में है। तो उनको थोड़ा सा ये हो रहा था, गुस्सा आ रहा था कि ये कैसे असंभव है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब एक काम्यवन में वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे तो उस समय गौरीदास पंडित ने पिटाई की अपने शिष्य की, हाँ, कि ये मेरा सुनता नहीं है, बात नहीं मानता है, मेरे मूड के अनुसार नहीं कार्य करता है। तो उन्होंने एक लकड़ लिए, झाड़ी लिए, कांटेदार डंडा लिया और श्यामानंद प्रभु को पिटाई किया, तो श्यामानंद प्रभु अपने गुरु के द्वारा पिटाई किए जा रहे थे और बहुत मारा जा रहा था, उनके हाथ पांव सब जगह। श्यामानंद प्रभु आनंद अनुभव कर रहे थे कि वास्तव में मैं इस जगत में अनाथ हूँ और मेरे गुरु के इस पिटाई आदि से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कोई ना कोई नाथ है, ये जगत में कोई मेरा केयर करने वाला है। हाँ, कोई हमें डांटता है, मारता है, बताता है, हाँ, सेवा में लगाता है, तो वास्तव में वो हमारा हितेशी है। तो ऐसे श्यामानंद ने कहा कि वास्तव में आप मेरे हितेशी हैं, नहीं तो ये जगत में हर कोई क्या है, स्वार्थमय प्रवृत्ति से भरा पड़ा है। और फिर रात को जब हृदय चैतन्य सो गए तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आए, और चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न में ही वो प्रणाम कर रहे थे हृदय चैतन्य, और देखा कि चैतन्य महाप्रभु की चद्दर ब्लड से भरी हुई है, शरीर में बहुत सारे घाव है चैतन्य महाप्रभु के। तो हृदय चैतन्य उनको पूछते कि क्या हुआ, हाँ क्या हुआ आपके साथ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये आपकी कृपा है। हाँ, तो वो समझ नहीं पाए हृदय चैतन्य आपकी कृपा, उन्होंने कहा कि आपने किसके ऊपर कृपा की थी कल, आपके शिष्य हृदय चैतन्य के ऊपर। हाँ, तो उन सारे, क्योंकि ये तो हृदय, ये श्यामानंद के ऊपर, और ये श्यामानंद मेरा जीवन और प्राण है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुझे इतना अधिक प्रिय है। हाँ, कि वो आपने जो भी उसको पिटाई की है उसको मैंने स्वीकारा है, जिसके कारण आप देख रहे हो कि मेरे पूरे शरीर में कई प्रकार के घाव हैं और ब्लड निकल रहा है। तो इस प्रकार से गौरीदा हृदय चैतन्य ने देखा कि उनका जो शिष्य है ये जो श्यामानंद कितना अधिक चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है। वो जाकर श्यामानंद का आलिंगन आदि करते हैं और फिर बंगाल वापस चले जाते हैं। फिर हम सुनते हैं कि ये तीन, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है जो गोस्वामी ग्रंथों को लेके जाते हैं उड़ीसा में, और वहाँ जाकर वान विष्णुपुर में वहाँ राजा वो चुराता है उन ग्रंथों को। और फिर श्रीनिवास आचार्य कहते कि आप दोनों चले जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल जाते हैं, श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में प्रचार करते हैं। तो श्यामानंद प्रभु जैसे उड़ीसा में प्रचार आदि करने के लिए गए, तो प्रचार के दौरान श्यामानंद प्रभु ने महान महान भक्तों को, महान महान राजाओं को उन्होंने भक्त बनाया था, और बहुत बहुत स्ट्रांगली उन्होंने पूरे उड़ीसा में प्रचार किया। और उस प्रचार के समय में उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना की, और रोज एक चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने भक्तों में, वो था नगर संकीर्तन। श्यामानंद प्रभु स्वयं नगर संकीर्तन के लिए जाते थे और अपने भक्तों को बेचते थे। तो जब एक समय उनके भक्त नगर संकीर्तन के लिए गए, तो उस स्थान का एक मुस्लिम शासक था शेर खान, उसको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, ये सारे लोग हमारे बिना परमिशन के, हाँ ये जो हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सारी सेनाओं को भेजा, उन्होंने भक्तों को पिटाई की, मृदंग आदि को तोड़ दिया शेर खान ने, और उनको डांटा भी और कहा फिर से आप ये करोगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। तो श्यामानंद प्रभु को जैसे पता चला, श्यामानंद प्रभु दूसरे दिन अपने पूरे और भक्तों को लेकर बाहर निकले, जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ था। शिवास आंगन में उनके मृदंग आदि तोड़े गए थे, फिर दूसरे दिन महाप्रभु ने कहा सारे नवदीप वासियों को लेकर पहला रोड संकीर्तन महाप्रभु ने किया था। पहले तो वो घर के अंदर करते थे श्रीवास आंगन में, लेकिन पहली बार महाप्रभु बाहर रोड पर जाकर नृत्य करने लगे, गाने लगे, जब उन्होंने कहा काजी को दिखा देंगे हमारी जो शक्ति है नाम संकीर्तन की। तो वैसे ही श्यामानंद प्रभु ने दूसरे दिन अपने सारे भक्तों को अपने साथ इकट्ठा किया और नाम संकीर्तन करते हुए बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उनकी सेना आ गई, उनके जो लोग आ गए मुस्लिम, वो मारने लगे, मृदंग आदि तोड़ने लगे, करताल को नदियों में फेंकने लगे। तो ये जब शुरू हो गया उनके बीच श्यामानंद प्रभु ने, तो श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, लाउडली कृष्ण नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यामानंद चरित जो ग्रंथ है उसमें वर्णन आता है कि श्यामानंद प्रभु दहाड़ रहे थे कृष्ण नाम ले लेकर, राधा कृष्ण को आह्वान कर रहे थे, उनके नामों का उच्चारण कर रहे थे, और जिसका प्रभाव इतना हुआ कि ये जो स्वयं शेर खान वहां था, उसकी सेना थी, वो उस दहाड़ कृष्ण नाम की तीव्र ध्वनि को सुनकर ही ब्लड उनके मुंह से निकलने लगा और उनकी जो दाढ़ी मूछें हैं वो जलने लगी। हाँ, वो वहां से भागने लगे और सारे लोग गायब हो गए और इनका नाम संकीर्तन कंटिन्यू हुआ। फिर दूसरे दिन भी वो नाम संकीर्तन के लिए निकले बाहर श्यामानंद प्रभु। तो दूसरे दिन देखा कि वो जो आसुरी प्रवृत्ति का मुस्लिम शासक शेर खान था वो आता है श्यामानंद प्रभु के पास और उनके चरणों में गिरता है और उनको चरणों में गिर के शरणागत हो जाता है। कहते हैं कल मेरे स्वप्न में अल्लाह आया था और अल्लाह ने क्या कहा कि वास्तव में ये जो नाम संकीर्तन हो रहा है ये मुझसे अभिन्न है, मेरे ही नामों का उच्चारण है और ये जो महान जो भक्त है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। और कहा कि हे शेर खान तुम क्या करो, हाँ मेरे इस भक्त की शरण ग्रहण करो। और फिर उन्होंने कहा वो जो अल्लाह है उन्होंने अपना गोल्डन रूप मुझे दिखाया, हाँ स्वर्ण रूप, वो कौन थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे शेर खान श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं और उनको कहते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करो और नाम दीक्षा मुझे प्रदान करो। तो श्यामानंद प्रभु उसके इस आचरण से बहुत प्रसन्न होते हैं और श्यामानंद प्रभु उनको दीक्षा देते हैं और उनका नाम क्या रखते हैं, चैतन्य दास। हाँ क्या रखते हैं, चैतन्य दास। तो श्यामानंद प्रभु के जो प्रमुख तीन शिष्य थे उनमें से ये भी एक था मुस्लिम शासक चैतन्य दास। उन्होंने बहुत प्रचार किया श्यामानंद प्रभु ने। फिर एक बार वृंदावन के लिए गए तो उन्होंने जो शुरू किया हुआ जो प्रीचिंग आंदोलन है वो श्यामानंद प्रभु ने अपने तीन शिष्यों को दिया। एक थे उनके दामोदर और दूसरे थे चैतन्य दास और तीसरे थे रसिकानंद, रसिक मुरारी। तो इन तीनों ने श्यामानंद प्रभु की शिक्षाओं को और उनके इस नाम संकीर्तन आदि विधि को आगे फैलाया। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु के बारे में बहुत कुछ वर्णन ग्रंथों में आता है। उन्होंने गोपीजन वल्लभपुर में गोपीजन वल्लभ नाम के विग्रह की स्थापना की थी और कई ग्रंथों का उन्होंने रचना की। एक ग्रंथ था गोविंद मंगल, एक ग्रंथ था वृंदावन परिक्रमा। वृंदावन के जितने भी लीला स्थलियाँ हैं उनका डिटेल वर्णन पर एक बुक उन्होंने पब्लिश किया था या लिखा था श्यामानंद प्रभु ने। और एक ग्रंथ था उपासना सार संग्रह, हाँ अप्राकृत रत्नावली, एक सॉन्ग बुक उन्होंने बनाया था। अलग जो गीत है उसका नाम था उस बुक का अप्राकृत पद रत्नावली, रत्नमय पद जो वैष्णव और कृष्ण के गुणगान में गाए हैं उनकी ये रचना थी। और फिर फाइनली जो श्यामानंद प्रभु हैं एक दिन जब उनको ये न्यूज़ मिलती है हाँ कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं अंबिका कालना में हृदय चैतन्य प्रकट हो गए हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रघात उनके हृदय में होता है। और कुछ ही दिनों ने दिन में उनको दूसरी न्यूज़ मिली कि उनके जो बहुत प्रिय शिष्य है दामोदर वो भी अप्रकट हो जाते हैं। तो उन दोनों के विरह में श्यामानंद प्रभु बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं। आचार्यगण उनके चरित्र में वर्णन करते कि इन दोनों के वियोग में अपने आध्यात्मिक गुरु और जो दामोदर नाम के उनके शिष्य थे इनके वियोग में इतने बीमार हो गए कि उसके बाद वो बाहर नहीं आए। बाहर नहीं आए मतलब वो पूर्ण रूप से भगवान नाम रूप गुण लीला आदि में मग्न रहे। और फाइनली उन्होंने ओडिशा में एक स्थान है नरसिंहपुर जिसको आज कानपुर कहते हैं, ओडिशा में एक छोटा सा टाउन है विलेज है, वहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा, इस जगत से अप्रकट हुए। और आज भी उनके जो शिष्य हैं रसिक मुरारी रसिकानंद प्रभु ने उनकी वहाँ समाधि स्थापित की है। तो गौड़िया संप्रदाय के महान आचार्य हैं ये तीन। ये चैतन्य प्रभु की सेकंड जनरेशन के प्रचारक हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो वैष्णवगण कहते हैं कि श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट को क्या कहते प्रभु जी, एक्सटेसी के एम्बॉडीमेंट है। चैतन्य महाप्रभु के भाव के प्रकट रूप कह सकते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के एक्सटेसी के मैनिफेस्टेशन या फिर एम्बॉडीमेंट ऑफ नित्यानंद दास एक्सटेसी, नरोत्तम दास ठाकुर। और श्यामानंद प्रभु एम्बॉडीमेंट ऑफ अद्वैत आचार्य एक्सटेसी, अद्वैत आचार्य के जो भक्ति भाव हैं उसके मूर्तिमान स्वरूप कहा जा सकता है। श्यामानंद प्रभु को, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के, और श्रीनिवासाचार्य चैतन्य महाप्रभु के। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु का दिव्य चरित्र है। इन दिव्य चरित्र को हम वैष्णव के जब हम सुनते हैं तो हम प्रेरित होते हैं अपने आध्यात्मिक साधना में, अपने आध्यात्मिक सर्विसेस आदि में। इसलिए निरंतर हमें करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना में एक चीज़ कही वैष्णवों के बारे में। वो कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद, कि ये जो वैष्णव ठाकुर हैं, भक्तगण हैं, वो पृथ्वी की संपदा हैं। सुना भाई हैया एक मन, हे भाई इन वैष्णव के बारे में सुनो, और कैसे सुनो, एक मन होकर, एक चित्त होकर इनके बारे में सुनो। हाँ, आश्रय लया बजे कृष्ण तारण आहे तेजे आर सभे मने मरे आकारण। तो इस प्रकार से आप एक, हाँ, इसी को गीता में कृष्ण ने कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन। जब एकाग्रता के साथ वैष्णव चरित्र का आदि को सुनते हो तो उससे आपको आध्यात्मिक सेवा और साधना में आप बल महसूस करते हो, और सदैव अपने आध्यात्मिक जीवन में उत्साही बने रहते हो, और सदैव प्रेरित रहते हो आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए। तो इसलिए हमारा सारा जीवन निर्भर है भक्तों की, वैष्णवों की कृपा पर। तो आज श्यामानंद पंडित से हमें कृपा की याचना करनी चाहिए कि किस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में की सेवा में मग्न थे, और साथ ही साथ जीव गोस्वामी की आज्ञा पर किस प्रकार से सेवा में, निम्न से निम्न सेवा में लगे थे, जिसके द्वारा उनको महान सिद्धि प्राप्त हुई, और किस प्रकार से जीव गोस्वामी की आज्ञा से उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया बंगाल और उड़ीसा आदि में जाकर। श्री श्यामानंद पंडित के, पतित पावन श्रीपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।